नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नेहा गोस्वामी। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह पाकिस्तान के परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। दिल्ली सरकार ने राजधानी के युवाओं के लिए हौसले की उड़ान नाम से एक टैलेंट हंट योजना की शुरुआत की है। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत 3 लापता बच्चों को उनके परिजनों से मिलाया। उत्तर रेलवे ने दिल्ली सराय रोहिला रेलवे स्टेशन के उन्नयन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 4 अगस्त से शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और भारतीय सशस्त्र बलों ने मात्र 22 मिनट में आतंकी हमले का बदला ले लिया। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। दूसरा पक्ष आदरणीय अध्यक्ष जी, पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई की तो कई बात है, लेकिन ये पहली ऐसी भारत की रणनीति बनी कि जिसमें पहले जहां कभी नहीं गए थे वहां हम पहुंचे। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह पाकिस्तान के परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा।
आदरणीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्ट होता है कि भारत ने 3 सूत्र तय किए हैं। अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब दे करके रहेंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। और तीसरा, हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं उनको अलग अलग नहीं देखेंगे।
श्री मोदी ने मध्यस्थता के दावों का खंडन करते हुए कहा कि विश्व के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की मांग नहीं की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान दुनिया ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत देखी और भारत में बने ड्रोन तथा मिसाइलों ने पाकिस्तानी हथियारों तथा गोला बारूद की क्षमता को उजागर किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की सेनाओं ने योजनाबद्ध ऑपरेशन को सटीकता से अंजाम दिया और पाकिस्तान इसे रोकने में असमर्थ रहा। उन्होंने आगे कहा कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के हवाई ठिकानों और संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद का समर्थन करने वाली सरकारों और आतंकी सरगनाओं को दो अलग अलग संस्थाओं के रूप में नहीं देखेगा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर ऑपरेशन सिंदूर पर देश का समर्थन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को सभी देशों का समर्थन मिला, लेकिन सशस्त्र बलों के पराक्रम का समर्थन नहीं किया गया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कल ऑपरेशन महादेव के दौरान एक संयुक्त अभियान में पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया।
कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर ए तोयबा का कमांडर था पहलगाम हमले में और गगनगीर आतंकी हमले में वो लिप्त था।
विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के मात्र 22 मिनट बाद ही पाकिस्तान सरकार से संपर्क किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा करके कथित तौर पर यह संदेश दिया गया कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के सशक्त, सफल और निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर आज राज्यसभा में विशेष चर्चा शुरू हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले के 3 आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में मार गिराने के लिए भारतीय सेना और सुरक्षा बलों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना और यह स्पष्ट संदेश देना था कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाता है।
हमने यह सुनिश्चित किया है कि हम पाकिस्तान के लिए इस पे ऑफ कैलकुलस को चेंज करेंगे और हम आतंकवाद को उनके लिए एक कॉस्ट मिस एडवेंचर बनाकर ही रहेंगे, ताकि आतंकवादियों के जेहन में यह बात बैठ जाए कि यदि हमारे एक भी भारतीय नागरिक को कुछ हुआ तो उनके पूरे आतंक ठिकानों को हम जड़ से निस्त नामूद करें। पिछले सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया गया ऑपरेशन सिंदूर एक गेम चेंजर साबित हुआ है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को आपातकालीन खरीद की स्वतंत्रता देकर उन्हें मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा में भाग लेते हुए सरकार पर खुफिया विफलता का आरोप लगाते हुए कई आतंकी हमलों का जिक्र किया।
2016 में पुरी और पठानकोट आतंकी हमला, 2019 में पुलवामा और अब 2025 में पहलगाम आतंकी हमला हुआ। इन सभी घटनाओं से साफ है कि बार बार देश की सुरक्षा और इंटेलिजेंस में चूक हो रही है, फेल्योर है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऑपरेशन महादेव की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे भारत की सुरक्षा शक्ति और अडिग संकल्प का प्रतीक बताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अद्वितीय समन्वय और साहस के साथ तीन आतंकियों को ढेर किया गया है। श्रीमती गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को धन्यवाद देते हुए कहा कि नया भारत आतंकवाद का सामना निर्णायक प्रहार से करता है। उन्होंने कहा कि इसी नीति का परिणाम है जिसने आतंक के खिलाफ भारत को विश्व पटल पर निर्णायक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सुबह तेज बारिश के बाद आईटीओ क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जलभराव की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीवर नालों की समय पर सफाई और टीमों की निगरानी से बारिश के कारण हुए जलभराव से कुछ ही समय में निजात पा ली गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकारों में जलभराव की स्थिति कई घंटों तक बनी रहती थी। श्रीमती गुप्ता ने दिल्ली को जलभराव से मुक्त कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया। वहीं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि आज दो घंटे की बारिश ने भाजपा सरकार की जलभराव से निजात दिलाने और गाद निकालने के काम की पोल खोल दी है। श्री यादव ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस मानसून की शुरुआत से पहले ही सरकार को चेतावनी देती रही है। उन्होंने कहा कि सरकार समय पर सीवर और नालों की सफाई करने में विफल रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 4 अगस्त से शुरू होगा। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से सदन बुलाने का औपचारिक आदेश मिलने के बाद विधानसभा के सचिव ने यह जानकारी दी। दिल्ली सचिवालय द्वारा जारी पत्र में बताया गया कि दिल्ली विधानसभा का तीसरा सत्र 4 अगस्त को दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद यह तीसरा सत्र होगा। दिल्ली सरकार ने आज राजधानी के युवाओं के लिए हौसलों की उड़ान नाम से एक टैलेंट हंट योजना की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार की आज हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
इस योजना का उद्देश्य दिल्ली के युवाओं की रचनात्मक प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाना है। इसके तहत सभी विधानसभाओं में टैलेंट हंट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद हर विधानसभा से प्रतिभाशाली युवाओं के पूल को इकट्ठा करके जोनल लेवल, जिला स्तर और फिर राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इस योजना के लिए 6 प्रकार की कलाएं चुनी गई है, जिनमें गायन, नृत्य, कविता, शिल्प कला, विजुअल आर्ट, डिजिटल आर्ट और थिएटर शामिल है। श्री मिश्रा ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने इस तरह की टैलेंट हंट योजना शुरू की है।
सरकार के द्वारा एक बड़ी योजना, जिसे आप अगले 6 महीने तक दिल्ली में इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हुई देखेंगे, ये योजना आज पास की गई है। हौसलों की उड़ान इसका नाम है और कोई भी प्रतिभा के रास्ते में कोई अड़चन न आए, इसके लिए दिल्ली की सरकार ने ये योजना संकल्प के साथ पास की है।
विजेताओं को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। योजना के लिए वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए देश के जाने माने कलाकारों को मेंटोर बनाकर उनके साथ जोड़ेगी। इस योजना से दिल्ली के करीब 50 लाख युवाओं को जोड़ा जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान के साथ आदर्श।
उत्तर रेलवे ने दिल्ली सराय रोहिला रेलवे स्टेशन के उन्नयन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। उत्तर रेलवे ने बताया कि यह परियोजना 21 जुलाई से 28 जुलाई तक चली, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 25 करोड़ है। स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग, नई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली, एक अतिरिक्त लूप लाइन और दो स्टेबलिंग लाइनें बनाई गई हैं, जिससे परिचालन क्षमता और सुरक्षा में वृद्धि हुई है। अब स्टेशन ट्रेनों के आवाजाही के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने आज तुगलकाबाद एयरो सिटी कॉरिडोर पर तुगलकाबाद और तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी के बीच भूमिगत सुरंग का निर्माण पूरा किया। डीएमआरसी ने बताया कि सुरंग में यह सफलता एक विशाल 91 मीटर लंबी टीबीएम मशीन की मदद से हासिल की गई। डीएमआरसी के अनुसार यह नई सुरंग लगभग 18 मीटर की औसत गहराई पर बनाई गई है। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 3 लापता बच्चों को नासिक से सफलतापूर्वक बरामद कर उनके परिजनों से मिलाया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इन बच्चों ने ऑनलाइन गेम के माध्यम से एक व्यक्ति से दोस्ती की थी, जिसने इनको एक फिल्म एक्टर से मिलवाने का वायदा किया था। पुलिस के अनुसार बच्चों को कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों ने पुलिस की तत्परता और समर्पण का आभार व्यक्त किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 5 वर्ष में इस नीति ने भारत में अधिक समावेशी, विद्यार्थी केंद्रित और भविष्य अनुरूप शिक्षा प्रणाली की नींव रखी है। आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति विश्व स्तरीय शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। ये एक दार्शनिक रूपरेखा के रूप में कार्य करती है। श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तनकारी पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करती है।
मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस ट्रांसफॉर्मेटिव विजन, जिसमें उन्होंने शिक्षा को भारत की ग्रोथ स्टोरी के साथ सपना देखा, इसको केंद्र बिंदु बनाया, आज हमारे सामने लक्ष्य है 2047 विकसित भारत की ओर जाते हुए नेशनल मिशन के नाते एनईपी 2020 हमारी पाथवे बनी हुई है।
दिल्ली की दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि इस फैसले से महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ेगी और दिल्ली को 24 घंटे बिजनेस हब बनाने में मदद मिलेगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़े प्रावधान भी किए गए हैं, जिनमें सीसीटीवी, सुरक्षा गार्ड, सुरक्षित परिवहन, लिखित सहमति और पॉश एक्ट के तहत आंतरिक शिकायत समिति की अनिवार्यता शामिल है। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल विभाग और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग को पिछले 20 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक की राशि संबंधित सभी मध्यस्थता मामलों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने निर्देश दिया। लोक निर्माण विभाग कार्यबल ने बताया कि इस व्यापक ऑडिट का उद्देश्य यह जानना है कि विभागों को कानूनी मामले में कितना वित्तीय नुकसान हुआ और किस तरह से सार्वजनिक धन खर्च हुआ। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। यह दिन बाघों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और दुनिया भर में उनके संरक्षण प्रयासों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 29 जुलाई को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह पाकिस्तान के परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। दिल्ली सरकार ने राजधानी के युवाओं के लिए हौसले की उड़ान नाम से एक टैलेंट हंट योजना की शुरुआत की है। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के अंतर्गत 3 लापता बच्चों को उनके परिजनों से मिलाया। उत्तर रेलवे ने दिल्ली सराय रोहिला रेलवे स्टेशन के उन्नयन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 4 अगस्त से शुरू होगा।